चैतन्य चरिता अमृत अंत्य लीला अध्याय 19 श्री चैतन्य महाप्रभु का अचिंत्य व्यवहार। मात्र भक्तों के शिरोमणि श्री चैतन्य महाप्रभु उन्मत्त की तरह भूलते तथा दीवालों पर अपना मुख रगड़ते थे। प्रेमावेश से अभिभूत होकर वे कभी कभी अपनी लीला संपन्न करने के लिए जगन्नाथ वल्लभ उद्यान में चले जाते थे। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो। श्री अद्वैत आचार्य की जय हो तथा चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो। इस तरह कृष्ण प्रेम के आवेश में श्री चैतन्य महाप्रभु उन्मत्त की तरह व्यवहार करते और रात दिन पागल की तरह बोलते रहते। जगदानंद पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत प्रिय भक्त थे। महाप्रभु को उनके कार्यों से अत्यधिक आनंद मिलता था। उनके वियोग में अपनी माता को अत्यंत दुखी जानकर महाप्रभु जगदानंद पंडित को प्रति वर्ष नवद्वीप भेजा करते कि वे जाकर उन्हें सांत्वना दे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगदानंद पंडित से कहा, आप नदिया जाओ और मेरी माता से मेरा नमस्कार कहना। मेरी ओर से उनके चरण कमलों का स्पर्श करना। मेरी ओर से उनसे कहना, कृपया स्मरण रखें कि मैं प्रतिदिन यहाँ आकर आपके चरण कमलों की वंदना करता हूँ। यदि किसी दिन आप मुझे भोजन कराना चाहती हैं, मैं निश्चय ही आकर आप जो कुछ देती हैं उसे स्वीकार करता हूँ। मैंने आपकी सेवा करना छोड़कर संन्यास व्रत धारण कर लिया है। इस तरह मैं उन्मत्त हो गया हूँ और मैंने धर्म के सिद्धांतों को नष्ट कर दिया है। हे माता, कृपया आप इसे अपराध के रूप में न ले, क्योंकि मैं आपका पुत्र हूँ और पूर्णतया आप पर आश्रित हूँ। मैं आपके आदेशानुसार यहाँ नीलाचल जगन्नाथपुरी में रह रहा हूँ। जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मैं यह स्थान नहीं छोड़ूंगा। परमानंदपुरी की आज्ञा का पालन करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी माता के पास वह प्रसाद वस्त्र भेजा जिसे भगवान जगन्नाथ ने अपनी गोप लीला के बाद छोड़ दिया था। श्री चैतन्य महाप्रभु यत्न पूर्वक जगन्नाथ जी का उत्तम कोटि का प्रसाद ले आए और उन्होंने इसे अलग अलग थैलियों में अपनी माता तथा नदिया के भक्तों के लिए भेजा। श्री चैतन्य महाप्रभु समस्त मात्र भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं। उन्होंने संन्यास व्रत लेने के बाद भी अपनी माता की सेवा की। इस तरह जगदानंद पंडित नदिया लौट आए और जब वे शची माता से मिले तो उन्होंने उनसे महाप्रभु का नमस्कार कहा। इसके बाद वे अद्वैत आचार्य इत्यादि अन्य सारे भक्तों से मिले और उन्हें जगन्नाथ जी का प्रसाद दिया। एक मास रहने के बाद उन्होंने शची माता से विदा होने की आज्ञा मांगी। जब अद्वैत आचार्य के पास जाकर उन्होंने लौट जाने की अनुमति मांगी तो अद्वैत प्रभु ने श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए एक संदेश दिया। अद्वैत आचार्य ने द्विअर्थी भाषा में एक गीत लिखा था जिसका आशय श्री चैतन्य महाप्रभु तो समझ सकते थे किंतु अन्य लोग नहीं समझ सकते थे। इस गीत में अद्वैत प्रभु ने सर्वप्रथम श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में करोड़ों बार नमस्कार किया था। तत्पश्चात उन्होंने उनके चरण कमलों में यह निवेदन किया था, श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि भावले की तरह अभिनय कर रहे हैं, उनसे कृपया यह कहना कि यहाँ हर व्यक्ति उन्हीं की तरह बावला हो गया है। कृपया उनसे यह भी कहना कि बाजार में अब चावल की कोई मांग नहीं है, और उन्हें कहना कि जो लोग बावा वेश में बावले हैं, वे अब भौतिक जगत में रुचि नहीं रखते। श्री चैतन्य महाप्रभु से यह भी कहना कि प्रेम में बावले हुए व्यक्ति अद्वैत प्रभु ने ये शब्द कहे हैं। अद्वैत आचार्य के वचन सुनकर जगदानंद पंडित हंसने लगे, और जब वे जगन्नाथपुरी या नीलाचल लौट कर आए तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को सब सूचित कर दिया। अद्वैत आचार्य से द्विअर्थी गीत सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु चुपके चुपके हंसने लगे, और उन्होंने कहा यह उनका आदेश है। तब वे मौन हो गए। स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने रहस्य जानते हुए भी महाप्रभु से पूछा, इस गीत का क्या अर्थ है, मैं इसे समझ नहीं सका। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, अद्वैत आचार्य भगवान के महान आराधक हैं, और वे वैदिक साहित्य में निर्देशित विधि विधानों में अत्यंत पारंगत हैं। अद्वैत आचार्य भगवान को आने तथा पूजित होने के लिए आमंत्रित करते हैं। वे पूजा करने के लिए अर्चा विग्रह को कुछ समय तक रखते हैं। पूजा पूरी हो जाने पर वे अर्चा विग्रह को अन्यत्र भेज देते हैं। मैं न तो इस गीत का अर्थ जानता हूँ, न ही यह जानता हूँ कि अद्वैत प्रभु के मन में क्या है। अद्वैत आचार्य महान योगी हैं, उन्हें कोई नहीं समझ सकता। वे गीत लिखने में इतने पटु हैं कि मैं भी नहीं समझ पाता। यह सुनकर सारे भक्त चकित हो गए, किंतु स्वरूप दामोदर गोस्वामी तो विशेष रूप से कुछ कुछ खिन्न हो गए। उस दिन से श्री चैतन्य महाप्रभु की भाव दशा विशेष रूप से बदल गई। कृष्ण से वियोग की उनकी भावना द्विगुणित हो उठी। क्योंकि श्रीमती राधा रानी के भावा वेश में महाप्रभु की विरह भावना प्रतिक्षण बढ़ती गई, अतः दिन तथा रात दोनों ही समय उनके कार्य उग्र तथा अविवेक पूर्ण होने लगे। एकाएक श्री चैतन्य महाप्रभु के भीतर भगवान कृष्ण के मथुरा गमन का दृश्य उदय हो आया, और वे उद्धुरणा नामक उन्माद के लक्षण प्रदर्शित करने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु उन्मत्त की तरह रामानंद राय का गला पकड़कर बोलने लगे, और स्वरूप दामोदर को अपनी गोपी सखी मानकर उनसे प्रश्न पूछने लगे। जिस तरह श्रीमती राधा रानी ने अपनी निजी सखी विशाखा से पूछा था, उसी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु भी वही श्लोक पढ़कर उन्मत्त की तरह बोलने लगे। हे प्रिय सखी, कहाँ है वे कृष्ण जो कि महाराज नंद के कुल रूपी सागर से उदय होने वाले चंद्रमा की तरह हैं? कहाँ हैं वे कृष्ण जिनका सिर मोर पंख से सुशोभित है? कहाँ हैं वे? कहाँ हैं वे कृष्ण जिनकी वंशी इतना गंभीर स्वर उत्पन्न करती है? ओह, कहाँ हैं वे कृष्ण जिनकी शारीरिक कांति इंद्र नील मणि के समान है? कहाँ हैं वे कृष्ण जो रास नृत्य में इतने निपुण हैं? ओह, कहाँ हैं वे जो मेरे प्राण बचा सकते हैं? कृपा करके मुझे बतलाओ कि अपने जीवन के कोष तथा सर्वोत्कृष्ट मित्र कृष्ण को कहाँ पा सकती हूँ? उनसे विरह का अनुभव करती हुई मैं अपने भाग्य के निर्माता विधाता को धिक्कारती हूँ। महाराज नंद का परिवार दुग्ध सागर की तरह है, जिसमें से भगवान कृष्ण समग्र ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले पूर्ण चंद्रमा के समान उदित हुए हैं। व्रजवासियों के नेत्र उन चकोर पक्षियों के समान हैं, जो उनकी शारीरिक द्युति के अमृत का निरंतर पान करते हैं और इस तरह शांति पूर्वक जीवन बिताते हैं। हे प्रिय सखी, कहाँ है कृष्ण? कृपया मुझे उनका दर्शन करने दो। यदि क्षण भर भी मैं उनका मुख नहीं देखती तो मेरा हृदय फटने लगता है। कृपया मुझे तुरंत ही उन्हें दिखलाओ, अन्यथा मैं जीवित नहीं रह सकती। वृंदावन की स्त्रियां काम वासनाओं के सूर्य से तप्त कुमुदिनियों के तुल्य हैं, किंतु चंद्रमा तुल्य कृष्ण उन्हें अपने हाथों का अमृत प्रदान करके प्रफुल्लित बनाते हैं। हे प्रिय सखी, अब मेरा वह चंद्रमा कहाँ है? मुझे उसका दर्शन कराकर मेरा जीवन बचा लो। हे प्रिय सखी, कहाँ है वह सुंदर मुकुट जिसके ऊपर मोर पंख नवीन बादलों में इंद्र धनुष जैसा लगता है? वह पीतांबर कहाँ है जो बिजली के समान चमकता है? और कहाँ है वह मोतियों का गले का हार जिसके मोती आकाश में उड़ रहे बगुलों की पंक्ति के समान लगते हैं? कृष्ण का श्यामल शरीर श्याम रंग के नए बादलों को पराजित करने वाला है। यदि किसी व्यक्ति की आंखें एक बार भी कृष्ण के सुंदर शरीर को बंदी बना लेती हैं, तो वह उसके हृदय के भीतर सदैव प्रमुख बना रहता है। कृष्ण का शरीर आम वृक्ष के रस के समान है, क्योंकि जब यह स्त्रियों के मनों में प्रवेश करता है तो महान प्रयत्न करने पर भी यह बाहर नहीं आता। इस तरह कृष्ण का अद्वितीय शरीर सेया बेर वृक्ष के कांटे के समान है। कृष्ण की शारीरिक द्युति इंद्र नील मणि के समान चमकीली है और वह तमाल वृक्ष की कांति को पराजित करने वाली है। उनके शरीर की कांति सारे जगत को पागल बना देती है, क्योंकि विधाता ने माधुर्य प्रेम के रस के सार को परिष्कृत करके उसे चांदनी से मिलाकर पारदर्शी बना दिया है। कृष्ण की वंशी की गहरी ध्वनि नवीन बादलों की गर्जना को पराजित कर देती है और सारे जगत के कानों को आकृष्ट करती है। इस तरह वृंदावन के निवासी जब उठते हैं तब वे त्रिषित पपीहों की तरह कृष्ण की शारीरिक कांति के अमृत की धारा को पीकर उस ध्वनि का पीछा करते हैं। कृष्ण कला तथा संस्कृति के आधार हैं और वे वह रामबाण औषधि हैं जो मेरे जीवन को बचाती है। हे सखी, क्योंकि मैं अपने मित्रों में से सर्वोत्तम मित्र के बिना जीवित हूँ, अतएव मैं अपनी आयु को धिक्कारती हूँ। मैं सोचती हूँ कि विधाता ने मुझे कई तरह से ठगा है। भला विधाता उस व्यक्ति को क्यों जीने देता है जो जीना नहीं चाहता? इस विचार से श्री चैतन्य महाप्रभु में क्रोध तथा शोक उत्पन्न हो गया। तब उन्होंने श्रीमद् भागवत का एक श्लोक पढ़ा जो विधाता को धिक्कारता है और कृष्ण के प्रति आक्षेप लगाता है। हे विधाता, तुम में तनिक भी दया नहीं है। तुम पहले तो मैत्री तथा स्नेह के द्वारा देहदारी जीवों को पास पास लाते हो, किंतु इसके पूर्व कि उनकी इच्छाएं पूरी हो तुम उन्हें विलग कर देते हो। तुम्हारे कार्यकलाप बच्चों के मूर्खतापूर्ण खिलवाड़ों जैसे हैं। हे विधाता, तुम प्रेम व्यापार के मर्म को नहीं जानते, इसलिए तुम हमारे प्रयासों को व्यर्थ बना देते हो। यह तुम्हारे बचपने को बतलाता है। यदि हम तुम्हें पकड़ पाए तो ऐसा पाठ पढ़ाए कि तुम फिर कभी ऐसी व्यवस्था न करो। रे क्रूर विधाता, तुम बड़े ही निष्ठुर हो, क्योंकि तुम ऐसे लोगों में प्रेम उत्पन्न करते हो जो विरले ही एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, और जब तुम उन्हें मिलाते हो तो इसके पूर्व की उनकी इच्छाएं पूरी हो उन्हें पुनः दूर दूर कर देते हो। रे विधाता, तुम इतने निर्दय हो। तुम कृष्ण का सुंदर मुख प्रकट करते हो और मन तथा आंखों को लुभाते हो, किंतु वे क्षण भर भी उस अमृत का पान नहीं कर पाते कि तुम कृष्ण को दूसरे स्थान पर भगा देते हो। यह बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि इस तरह से तुम दान दी हुई वस्तु को छीन लेते हो। हे दुराचारी विधाता, यदि तुम हमसे कहो कि अक्रूर ही सचमुच दोषी है, तुम मुझ पर क्यों क्रोधित हो? तो मैं तुमसे कहती हूँ, रे विधाता, तुम ही ने अक्रूर का रूप धारण करके कृष्ण को चुरा लिया है। अन्य कोई व्यक्ति ऐसा व्यवहार नहीं करता, किंतु यह तो मेरे ही भाग्य का दोष है। मैं तुम पर व्यर्थ ही आक्षेप क्यों करूं? तुम्हारे तथा मेरे बीच कोई घनिष्ठता नहीं है, किंतु कृष्ण तो मेरे प्राण तथा आत्मा हैं। हम एक साथ रहने वाले हैं, किंतु वे ही हैं जो अब इतने क्रूर बन गए हैं, जिनके लिए मैंने अपना सब कुछ त्याग दिया, वे ही मुझे अपने हाथों से मार रहे हैं। कृष्ण को स्त्रियों का वध करते हुए कोई डर नहीं लगता। निसंदेह मैं उन पर मर रही हूँ, किंतु वे मेरी ओर मुड़कर देखते तक नहीं। उन्होंने क्षण भर में हमारे प्रेम व्यापार को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। फिर भी मैं कृष्ण पर क्यों रुष्ट होऊं? यह तो मेरे अपने दुर्भाग्य का दोष है। मेरे पाप कर्मों का फल पक चुका है, इसलिए वे कृष्ण जो सदैव मेरे प्रेम के वश में रहते थे अब मेरे प्रति उदासीन है। इसका अर्थ यही है कि मेरा दुर्भाग्य अत्यंत प्रबल है। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु विरह भाव में शोक करते, हाय हाय, हे कृष्ण आप कहाँ चले गए हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु अपने हृदय में गोपियों के भावों को अनुभव करते हुए, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, जैसे उनके शब्दों से अपनी पीड़ा व्यक्त करते। तब स्वरूप दामोदर तथा रामानंद राय ने महाप्रभु को सांत्वना देने के लिए तरह तरह के उपाय किए। उन्होंने मिलाप के गीत गाए जिनसे उनका हृदय परिवर्तित हुआ और उनका मन शांत हो गया। इस तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु को विलाप करते करते आधी रात बीत गई। तब स्वरूप दामोदर ने उन्हें गंभीरा नामक कमरे में सुला दिया। जब महाप्रभु को सुला दिया गया तो रामानंद राय अपने घर चले गए और स्वरूप दामोदर तथा गोविंद गंभीरा के दरवाजे पर लेट गए। श्री चैतन्य महाप्रभु का मन आध्यात्मिक आनंद से अभिभूत था, इसलिए वे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए सारी रात जागते रहे। कृष्ण से विरह का अनुभव करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु इतने किम कर्तव्य मूड हो गए कि वे उस महान चिंता में उठ खड़े हुए और गंभीरा की दीवालों पर अपना मुख रगड़ने लगे। उनके मुंह, नाक तथा गालों में हुए अनेक घावों से रक्त निकलने लगा, किंतु अपने भावावेश के कारण महाप्रभु को इसका पता नहीं चल पाया। भावावेश में श्री चैतन्य महाप्रभु सारी रात दीवालों पर अपना मुख रगड़ते रहे और गौं गौं का विचित्र शब्द निकालते रहे, जिसे स्वरूप दामोदर दरवाजे से सुन सकते थे। तब दीपक जलाकर स्वरूप दामोदर तथा गोविंद ने उस कमरे में प्रवेश किया। जब उन्होंने महाप्रभु का चेहरा देखा तो दोनों ही अत्यंत दुखी हो गए। वे महाप्रभु को उनके बिस्तर पर ले आए, उन्हें शांत किया और तब पूछा, आपने अपने साथ यह क्या कर रखा है? श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, मैं इतने उद्वेग में था कि मैं कमरे में ठहर नहीं सकता था। मैं बाहर जाना चाहता था, इसलिए दरवाजे की खोज में कमरे में इधर उधर घूमने लगा। दरवाजा न ढूंढ सकने के कारण मैं अपना मुंह चारों दीवारों पर पटकता रहा। इससे मेरा मुंह घायल हो गया और रक्त बहने लगा। फिर भी मैं बाहर न जा सका। उन्माद की इस अवस्था में श्री चैतन्य महाप्रभु का मन अस्थिर था। वे जो भी कहते या करते वह सब उन्माद का लक्षण था। स्वरूप दामोदर अत्यधिक चिंतित थे। किंतु तभी उनके मन में एक विचार आया। अगले दिन उन्होंने अन्य भक्तों से मिलकर इस पर विचार किया। परस्पर विचार विमर्श करने के बाद सबों ने श्री चैतन्य महाप्रभु से विनती की कि वे अपने साथ उस कमरे में शंकर पंडित को भी लेटने दें। इस तरह शंकर पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु के पांवों के पास लेटता और महाप्रभु अपने पांव शंकर के शरीर पर रखते। शंकर प्रभु पादोय धान अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु का तकिया के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे विदुर के समान थे, जैसा कि सुखदेव गोस्वामी इसके पूर्व उनका वर्णन कर चुके हैं। जब भगवान कृष्ण के चरणों के रखने के स्थान रूप विनीत विदुर जी मैत्रेय से इस प्रकार कह चुके तो मैत्रेय ने बोलना प्रारंभ किया। भगवान कृष्ण विषयक कथाओं की चर्चा से उत्पन्न दिव्य आनंद के कारण उनको रोमांच हो आया। शंकर श्री चैतन्य महाप्रभु के पांव दबाते किंतु पांव दबाते दबाते सोने लगते और इस प्रकार लेट जाते। वे शरीर को बिना ढके ही सोते रहते और श्री चैतन्य महाप्रभु जग कर उन पर अपनी रजाई डाल देते। शंकर पंडित सदा सो तो जाते थे किंतु शीघ्र ही जाग कर बैठ जाते और पुनः श्री चैतन्य महाप्रभु के पांव दबाने लगते। इस तरह वे पूरी रात जागते रहते। शंकर के भय से श्री चैतन्य महाप्रभु न तो अपना कमरा छोड़ते न ही अपने कमल सदृश मुह को दीवारों पर रगड़ते। श्री चैतन्य महाप्रभु की इस लीला का बहुत ही सुंदर वर्णन रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपनी पुस्तक गौरांग स्तव कल्प वृक्ष में किया है। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने प्राण तुल्य वृंदावन के अनेक मित्रों के विरह के कारण उन्मत्त की तरह बातें करते। उनकी बुद्धि विकृत हो गई थी। वे दिन रात अपने चंद्रमा सदृश मुखड़े को दीवालों पर रगड़ते जिससे गांवों से रक्त बहता रहता। ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु मेरे हृदय में उदित हो और मुझे प्रेम से उन्मत्त कर दे। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु रात दिन कृष्ण के प्रेम रूपी सिंधु में मग्न रहते। कभी वे डूबे रहते और कभी तैरते रहते। एक बार वे सात अप्रैल मई मास की पूर्णमासी की रात में श्री चैतन्य महाप्रभु एक उद्यान में गए। महाप्रभु अपने भक्तों सहित जगन्नाथ वल्लभ नामक सुंदरतम उद्यान में प्रविष्ट हुए। इस उद्यान में फूलों से लदे वृक्ष तथा लताएं वृंदावन जैसे ही थे। भौरे शुक शारी एवं पिक पक्षी एक दूसरे से बातें कर रहे थे। मंद पवन सुगंधित पुष्पों की गंध लेकर बह रही थी। यह पवन गुरु बनकर सारे वृक्षों तथा लताओं को नृत्य सिखा रही थी। पूर्ण चंद्रमा के तेज से प्रकाशित सारे वृक्ष तथा लताएं प्रकाश में जलमला रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वहां पर छहों ऋतुएं विशेषतया वसंत ऋतु उपस्थित हों। उसको ध्यान को देखकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए। इस वातावरण में महाप्रभु ने अपने संगियों से ललित लवंगलता से प्रारंभ होने वाला गीत गोविंद का श्लोक गाने को कहा और वे स्वयं नृत्य करने लगे तथा उनके साथ चारों ओर घूमने लगे। इस तरह वे प्रत्येक वृक्ष तथा लता के चारों ओर घूमते हुए अशोक वृक्ष के नीचे आए और कहता उन्होंने भगवान कृष्ण को देखा। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण को देखा तो वे तेजी से दौड़ने लगे, किंतु कृष्ण स्मित हास्य करते हुए अदृश्य हो गए। पहले कृष्ण को पाने तथा उसके बाद पुनः उन्हें खो देने से श्री चैतन्य महाप्रभु अचेत होकर भूमि पर गिर पड़े। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शरीर की सुगंध से सारा उद्यान भर गया। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस सुगंध को सूंघा तो वे तुरंत अचेत हो गए, किंतु कृष्ण के शरीर की सुगंध उनके नथुनों में निरंतर प्रवेश कर रही थी और महाप्रभु उसका आस्वादन करने के लिए उन्मत्त हो रहे थे। श्रीमती राधा रानी ने अपनी गोपी सखियों से एक बार बतलाया कि वे किस तरह कृष्ण के शरीर की दिव्य सुगंध के लिए लालायित हो रही हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसी श्लोक को पढ़ा और उसका अर्थ स्पष्ट किया। कृष्ण के दिव्य शरीर की सुगंध कस्तूरी की सुगंध को भी पराजित करने वाली और समस्त स्त्रियों के मनों को आकृष्ट करने वाली है। उनके शरीर के कमल समान आठ अंग कमल के साथ कपूर की मिश्रित सुगंध को वितरित करते हैं। उनके शरीर पर कस्तूरी कपूर चंदन तथा अगरू जैसी सुगंधित वस्तुओं का लेप लगा हुआ है। हे सखी, ऐसे भगवान जो कि मदन मोहन भी कहे जाते हैं सदैव मेरे नथुनों की इच्छा को वर्धित करते हैं। कृष्ण के शरीर की सुगंध कस्तूरी तथा नील कमल के फूलों की सुगंध को पराजित करने वाली है। 14 लोकों में फैल कर यह हर एक को आकृष्ट करती है और समस्त स्त्रियों के नेत्रों को अंधा बनाती है। हे प्रिय सखी, कृष्ण के शरीर की सुगंध सारे जगत को मोहित करती है, विशेषतया स्त्रियों के नथुनों में प्रविष्ट होकर यह वहीं पर रुक जाती है। इस तरह यह उन्हें बंदी बनाकर बलपूर्वक कृष्ण के पास ले आती है। कृष्ण की आंखें, नाभि तथा मुंह, हाथ तथा पैर ये उनके शरीर पर आठ कमल पुष्पों के समान हैं। इन आठों कमलों से कपूर तथा कमल की मिली जुली सुगंध निकलती है। यह सुगंध उनके शरीर से संबंधित है। जब चंदन को अगुरु, कुमकुम, कस्तूरी तथा कपूर के साथ मिलाकर कृष्ण के शरीर पर लेप किया जाता है तो यह कृष्ण की मूल शारीरिक सुगंध के साथ मिल जाता है और उसे आच्छादित करता प्रतीत होता है। कृष्ण के दिव्य शरीर की सुगंध इतनी आकर्षक है कि यह सारी स्त्रियों के शरीरों तथा मनों को मोह लेती है, यह उनके नथुनों को भ्रमित करती है, उनके कटिबंधों तथा केशों को शिथिल बनाती है और उन्हें उन्मत्त करती है। विश्व भर की स्त्रियां इसके प्रभाव में आ जाती हैं। इसीलिए कृष्ण के शरीर की सुगंध एक डाकू के समान है। इसके पूर्ण प्रभाव में आकर नथुने इसके लिए निरंतर लालायित रहते हैं। यद्यपि वे कभी इसे प्राप्त कर पाते हैं तो कभी नहीं भी कर पाते, किंतु जब वे इसे पाते हैं तो जी भर कर पान करते हैं। यद्यपि वे और अधिक की चाह करते हैं, किंतु यदि वे नहीं पाते तो कृष्णा के मारे मर जाते हैं। अभिनेता मदन मोहन ने सुगंध की दुकान खोल रखी है और यह सुगंध विश्व भर की स्त्रियों को ग्राहक के रूप में आकृष्ट करती है। वे इस सुगंध को निशुल्क बांटते हैं, किंतु यह सारी स्त्रियों को इस तरह अंधा बना देती है कि वे घर लौटने का मार्ग तक ढूंढ नहीं पाती। इस तरह कृष्ण के शरीर की सुगंध ने श्री चैतन्य महाप्रभु का मन चुरा लिया, जिससे वे भौरे की तरह इधर उधर दौड़ने लगे। वे वृक्षों तथा लताओं के पास इस आशा से दौड़ जाते कि भगवान कृष्ण प्रकट होंगे, किंतु उनको केवल कृष्ण के शरीर की सुगंध ही प्राप्त हो पाती। स्वरूप दामोदर तथा रामानंद राय दोनों ही महाप्रभु के लिए गाने लगे और महाप्रभु नृत्य करने लगे। वे प्रातः होने तक सुख का आनंद लेते रहे। तब महाप्रभु के दोनों पार्षदों ने महाप्रभु की बाह्य चेतना जगाने के लिए उपाय सोचा। इस तरह श्रील रूप गोस्वामी का दास मैं कृष्ण दास ने इस अध्याय में महाप्रभु की चार प्रकार की लीलाओं का गान किया है। महाप्रभु की मात्र भक्ति, उनके पागलपन के शब्द, रात में दीवालों पर उनका मुख रगड़ना तथा भगवान कृष्ण की सुगंध प्रकट होने पर उनका नृत्य करना। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु को फिर से बाह्य चेतना आ गई। तब उन्होंने स्नान किया और वे भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने गए। भगवान कृष्ण की लीलाएं अलौकिक तथा दिव्य शक्ति से ओतप्रोत हैं। ऐसी लीलाओं की विशेषता है कि वे तर्क की परिधि में नहीं आती। जब किसी के हृदय में कृष्ण का दिव्य प्रेम जागृत होता है, तब बड़े से बड़ा विद्वान भी उस व्यक्ति के कार्यकलापों को नहीं समझ सकता। जिस महान व्यक्ति के हृदय में भगवत प्रेम का उदय हुआ हो, उसके कार्यों तथा लक्षणों को बड़े से बड़ा विद्वान भी नहीं समझ सकता। श्री चैतन्य महाप्रभु के कार्यकलाप विशेषतया उन्मत्त की तरह उनका बोलना निसंदेह असामान्य है। अतएव जो भी इन लीलाओं को सुने, उसे चाहिए कि संसारी तर्क न करे, उसे इन लीलाओं का पूरी श्रद्धा पूर्वक श्रवण मात्र करना चाहिए। इन बातों के सत्य होने की प्रामाणिकता श्रीमद् भागवत में प्राप्त है। दशम स्कंद के भ्रमर गीत नामक अध्याय में श्रीमती राधा रानी कृष्ण के प्रेमावेश में उन्मत्त जैसी बातें करती हैं। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंत में वर्णित द्वारका की रानियों के गीत विशेष अर्थपूर्ण हैं। उन्हें बड़े बड़े पंडित भी नहीं समझ पाते। यदि कोई व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु के दासों का दास बन जाता है और उनकी कृपा प्राप्त कर लेता है तो वह इन सारी बातों पर विश्वास कर सकता है। इन कथाओं को श्रद्धा पूर्वक सुनने का प्रयास करो, क्योंकि इनके सुनने में भी परम आनंद होता है। इसे सुनने से शरीर मन तथा अन्य जीवों से संबंधित सारे कष्ट नष्ट हो जाएंगे और उसी के साथ मिथ्या तर्कों का दुख भी दूर हो जाएगा। श्री चैतन्य चरिता अमृत नित्य नवीन है। इसको बार बार सुनने से मनुष्य के हृदय तथा कान शांत होते हैं। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए तथा सदैव उनकी कृपा की कामना करते हुए उनके चरण चिन्हों पर चलकर मैं कृष्ण दास श्री चैतन्य चरिता अमृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार श्री चैतन्य चरिता अमृत अंत्य लीला के अंतर्गत श्री चैतन्य महाप्रभु का अचिंत्य व्यवहार शीर्षक 19वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।